हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। प्रीति, ठीक है सर, पर बेटे में खून की कमी है और डॉक्टर का कहना है कि अगर जल्दी उसे खून नहीं चढ़ाया गया तो वो बच नहीं पाएगा। आयुष्मान ने कोशिश तो की, पर फिर भी उसकी आवाज़ में उसकी परेशानी जाहिर हो गई थी। आवाज़ भी भारी थी, जो उसके मन की दशा को दर्शा रही थी। उसकी बात सुनकर मिस्टर दीक्षित ने तुरंत ही सवाल किया, तो इसमें परेशानी क्या है? अगर खून नहीं मिल रहा तो मुझे बताओ, कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए? इतने लोग हैं यहाँ, इंतज़ाम हो जाएगा। मिस्टर दीक्षित ने आयुष्मान की परेशानी का अंदाज़ा लगाया। उनका सवाल सुनकर आयुष्मान ने मायूसी से कहा, बी नेगेटिव ब्लड चाहिए सर, और ब्लड मिल नहीं रहा। बी नेगेटिव ब्लड चाहिए, और तुम इतना परेशान हो रहे हो? अरे मुझे बताया होता, मेरा ब्लड भी तो बी नेगेटिव है। मिस्टर दीक्षित की बात सुनकर आयुष्मान चौंकते हुए बोला, आपका ब्लड बी नेगेटिव है सर? हाँ, और अब तुम सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करना बंद करो और मुझे जल्दी से लोकेशन भेजो, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ओके सर, आयुष्मान ने हामी भरी और तुरंत ही लाइव लोकेशन शेयर कर दी। मिस्टर दीक्षित की बात सुनकर आयुष्मान को एक उम्मीद की किरण नजर आई और साथ ही कुछ हिम्मत भी मिली। देखते देखते एक घंटा बीत गया। मिस्टर दीक्षित के साथ मिसेस दीक्षित भी आईं। उन्होंने डॉक्टर से बात की, मिस्टर दीक्षित के कुछ टेस्ट्स हुए और उनका खून बच्चे को चढ़ाया जाने लगा। सुबह से दोपहर हो गई थी। प्रीति को कुछ देर पहले ही होश आया था, डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। मिस्टर और मिसेस दीक्षित वहीं रुके हुए थे। बच्चे की हालत अब ठीक थी, फिर भी उसे ऑब्जर्वेशन में NICU में रखा गया था, इसलिए अभी आयुष्मान और बाकी किसी ने उसे नहीं देखा था। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आए और आयुष्मान को प्रीति से मिलने की इजाज़त दे दी। आयुष्मान ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए, पर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और उसने मामा जी, मामी और मानसी को देखते हुए गंभीरता से कहा, प्रीति को प्रेम वाली बात मत बताइएगा, उसे बुरा लगेगा। तीनों ने सर हिला दिया। आयुष्मान ने गहरी सांस छोड़ी और वार्ड की तरफ कदम बढ़ा दिए। प्रीति हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी और दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। उसकी बेचैन व्याकुल निगाहों को किसी का इंतजार था, और जल्दी ही उसका वो इंतजार खत्म हुआ जब दरवाज़ा खुला और आयुष्मान ने अंदर वार्ड में कदम रखा। प्रीति की नज़रें आयुष्मान के चेहरे पर पड़ीं और आयुष्मान की निगाहें प्रीति की निगाहों से टकरा गईं। पूरे एक हफ्ते बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था, और स्थिति ऐसी थी कि दोनों ही कुछ भी कहने में खुद को असमर्थ पा रहे थे। जहाँ एक तरफ आयुष्मान ने प्रीति के खोने के डर का सामना किया था, वहीं प्रीति भी इस डर से जूझ रही थी कि जाने दोबारा आयुष्मान को देख पाएगी या नहीं। उनकी निगाहें एक दूसरे से उलझीं और देखते ही देखते एक दूसरे का अक्ष धुंधला नजर आने लगा। आंखों में आंसू भर आने की वजह से दृष्टि बाधित हो गई थी। आयुष्मान नम आंखों से प्रीति को देखकर मुस्कुराया, पर प्रीति उसे देखकर रो पड़ी। प्रीति को रोते देखकर आयुष्मान दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों से पोंछते हुए बोला, प्रीति क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? सब ठीक है प्रीति, तुम हमारा बच्चा, दोनों ठीक हो, बेटा हुआ है हमें, इतनी खुशी की बात है कि तुम दोनों सेफ हो, फिर तुम रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है तुम्हें, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आयुष्मान बेचैन सा घबराहट में उससे एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था, पर प्रीति जवाब देने के बजाय बस रोए जा रही थी। तो आयुष्मान ने खुद से ही अंदाज़ा लगाया, और जैसे ही डॉक्टर को बुलाने के लिए पीछे हटने लगा, प्रीति ने उसकी हथेलियों को पकड़कर उसे रोक लिया और सुबकते हुए बोली, दर्द नहीं हो रहा मुझे, मुझे रोना आ रहा है, पता है कितना डर गई थी मैं, मुझे लगा था कि हमारा बच्चा मेरे अंदर ही दम तोड़ देगा, मैं डर गई थी कि दोबारा आपको देख पाऊंगी भी या नहीं, बहुत घबरा गई थी मैं, आपको पुकार रही थी पर आप नहीं थे, बहुत दर्द हो रहा था मुझे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, मुझे लगा मैं आपको आखिरी बार देखे बिना ही। प्रीति के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। वो आंसुओं से भीगी निगाहों से आयुष्मान को देखने लगी, जिसने उसके लबों पर अपनी उंगली रखकर उन्हें खामोश कर दिया था। आयुष्मान ने बेचैन घबराई निगाहों से प्रीति को देखा और नाराज़गी से बोला, खबरदार जो आगे एक और शब्द बोला तो, तुम्हें मालूम भी है कि क्या हालत थी मेरी जब मैंने तुम्हारे गिरने की खबर सुनी थी तो, मैंने कहा था ना तुम्हें अपना ध्यान रखने, पर तुमने अपनी और हमारे बच्चे की जान खतरे में डाल दी, कितना डर गया था मैं, मालूम भी है तुम्हें, कितनी बार बताया है मैंने तुम्हें कि तुम और हमारा बच्चा ही मेरा परिवार है, और तुमसे मेरे छोटे से परिवार का ख्याल नहीं रखा गया, अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, सोचा था तुमने? तुम्हें अंदाजा तक नहीं कि इतने घंटों में कितनी मौत मरा हूँ मैं। अंदर से इतना डर गया था कि खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था। जब ड्राइव करके यहाँ आ रहा था तो आँखों के सामने अंधेरा छा गया था। हर बीतते वक्त के साथ मेरी धड़कनें धीमी पड़ती जा रही थी। कितना घबरा गया था मैं। बोलते बोलते आयुष्मान का गला भर आया और आंखें सजल हो उठीं। प्रीति ने उसकी हथेली को अपने लबों से चूम लिया और रुंधे स्वर में बोली, सॉरी, पता नहीं कैसे मेरा पैर स्लिप हो गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। आयुष्मान से आगे कुछ कहा नहीं गया। उसने प्रीति को हल्का ऊपर उठाते हुए अपने गले से लगा लिया। दोनों की बेचैन मध्यम चलती धड़कनों ने एकाएक रफ्तार पकड़ ली और एक दूसरे की बेचैन धड़कनों में घुलते हुए उनके तड़पते बेकरार दिलों को सुकून पहुंचाने लगे। आयुष्मान कुछ पल यूं ही उसे अपने सीने से लगाए महसूस करता रहा, फिर अपने आंसुओं को पोंछा और प्रीति को वापस बेड पर लिटाते हुए उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, अब बिल्कुल रोना नहीं है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, असर पड़ेगा तुम पर, इसलिए बिल्कुल शांत हो जाओ और खबरदार हो, दोबारा कभी मरने की बात अपने मुंह से निकाली, नाराज हो जाऊंगा तुमसे और दोबारा कभी मानूंगा भी नहीं। आयुष्मान की धमकी सुनकर प्रीति घबरा कर बोली, नहीं, आप नाराज मत होइएगा, मैं दोबारा कभी मरने की बात नहीं करूंगी। प्रीति को यूं घबराते देखकर आयुष्मान मुस्कुराया, फिर प्यार से उसके गाल को छू कर बोला, नहीं होऊंगा तुमसे नाराज और दोबारा कभी तुम्हें खुद से दूर भी नहीं करूंगा। वैसे बधाई हो, बेटे को जन्म दिया है आपने, माँ बन गई हो अब तुम, और आप पापा, तो आपको भी बधाई। प्रीति भी मुस्कुरा उठी। फिर अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसने मुंह लटकाते हुए उदास लहजे में कहा, डॉक्टर कह रहे थे कि हमारा बेटा बहुत वीक है। तो क्या हुआ, वक्त के साथ वीकनेस दूर हो जाएगी, फिर वो सेफ है, क्या इतना काफी नहीं? आयुष्मान ने उसकी चिंता कम करने की कोशिश की। प्रीति ने एक बार फिर मुंह लटकाते हुए कहा, डॉक्टर बता रहे थे कि उसके अंदर खून की कमी थी, अगर वक्त पर आपके बॉस नहीं आते तो उसे नहीं बचा पाते, और अभी भी उसे हमें नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। हाँ, पर अगर सब ठीक रहा तो शाम तक हमारा बेटा हमारे पास होगा, इसलिए तुम ये उदासी छोड़ दो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं तुमसे मिलने का, बहुत परेशान रहे वे तुम्हारे लिए, अगर अब भी उनसे ऐसे चेहरे के साथ मिलोगी तो सब और परेशान हो जाएंगे, चलो अपना मुंह ठीक करो और जरा मुस्कुरा कर दिखाओ मुझे। आयुष्मान के कहने पर प्रीति हौले से मुस्कुरा दी। आयुष्मान ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और बाहर चला आया। अब तक राजेश भी आ चुका था, गरिमा जी, अवधेश जी के साथ बाकी सब भी आकर प्रीति से मिले, उसे बधाई दी। अब सभी खुश थे, इतनी चिंता और दुख के बाद अब जाकर वे सुकून से थे। प्रीति के पेरेंट्स भी आए थे और माधुरी को भी मजबूरी में आना पड़ा था। सबसे मिलने के बाद प्रीति को आराम करने के लिए बोलकर सबको बाहर निकाल दिया गया। आयुष्मान ने बाकी सबको घर भेज दिया, अपने बॉस को थैंक यू कहा, आखिर उन्होंने ही उसके बेटे की जान बचाई थी, वो तो रुकना चाहते थे पर काम की वजह से उन्हें जाना पड़ा। अंदर प्रीति सो रही थी और आयुष्मान बाहर बेंच पर बैठा था।
ये कुछ घंटे उसके लिए कितने भारी रहे ये बस वही जानता था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और बेंच से सर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं।